शुरू शुरू में बुंदेलखंड में भी साधुओं का आवागमन बहुत कम था। आचार्य शांति सागर महाराज जी के जमाने में तो साधुओं का विहार ही दुर्लभ था। उस समय क्या हुआ कि तीन मुनिराज मध्य प्रदेश की तरफ आए, गुना जिले में। गुना जिला नाम सुना होगा आपने, वहाँ अशोकनगर है, मुंगावली है, खुद गुना भी है, पगारा वगैरह बहुत सारे ऐसे स्थान है। तो जब मुनिराज आए वहां पर, तो मुंगावली में निश्चित हुआ कि भाई यहां पर ठहरेंगे। तो जब मुंगावली में ठहरे वो, तो समाचार आसपास सब जगह फैल गया कि दिगंबर जैन साधु आए हैं। अब दिगंबर जैन साधु इतने दुर्लभ थे कि देखना मुश्किल था, दर्शन पाना मुश्किल था। पुराने कवियों ने तो कई ऐसे गीत लिख दिए हैं कि ऐसे मुनि कब मिल हैं, कि जिनके दर्शन से हमारी आंखें धन्य हो जाएगी। तो वो तीन मुनिराज जब वहां पर पधारे, तो फिर जैसे जैसे समाचार फैलते गए, वो खबर जो होती है बहुत जल्दी फैल जाती है कई बातों की। तो फिर सारी ट्रेन पैक होकर के आने लग गई मुंगावली रेलवे स्टेशन पर। गाड़ियों में डब्बों में जगह नहीं थी आने वालों को। तो यहाँ की समाज बड़ी चिंतित हो गई कि इतने लोगों की व्यवस्था अपन कैसे करेंगे। बिल्कुल सारी की सारी ट्रेनें फुल आती हैं और फिर जो दर्शनार्थी दर्शन करके जाते हैं, इनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और फिर स्नान आदि की व्यवस्था, सारी व्यवस्था तो समाज को ही करना पड़ेगी, नहीं तो फिर ये कहीं और ठहरेंगे, किसी और धर्मशाला में, अजैनों के पास भी इनको जाना पड़ सकता है। तब उस समय वहाँ पंडित जगन मोहन लाल जी भी पहुँच गए, और जगन मोहन लाल जी एक व्रती विद्वान हुए हैं, तो उनका मुनियों से भी संपर्क रहा है और फिर आध्यात्मिक उपदेष्टाओं से भी उनका संबंध रहा है। तो फिर समाज के जो मुख्य पदाधिकारी गण थे वो इकट्ठा हुए और फिर पंडित जी से परामर्श लेने के लिए आए। बोले कि पंडित जी कोई रास्ता निकालो, क्या करें, इतने लोगों को हमारी समाज कैसे संभाले। तब फिर पंडित जी ने बोला कि तुम लोगों के यहाँ शादियां होती है? हाँ होती है, बोले। तो उस समय कितने लोग आते हैं? तो बोले काफी लोग आते हैं। तो उनको तुम लोग कैसे संभालते हो? बोले बड़े प्रेम से संभालते हैं, हमारे अपने लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और परिचित मित्रजन इष्टजन होते हैं। तो बोले कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में विष्णु कुमार मुनि कौन से अंग में प्रसिद्ध हुए हैं? वात्सल्य अंग में। क्यों हुए प्रसिद्ध? क्योंकि उन्होंने अपने सहधर्मी वात्सल्य के कारण ज्ञान ध्यान तप को एक तरफ रखा और मुनियों के उपसर्ग निवारण के हेतु उन्होंने जाकर के अपनी रिद्धि का प्रयोग किया। तो आपकी जो रिद्धि है, उन श्रावकों से कह रहे हैं पंडित जी, आपकी जो रिद्धि है वो कब काम आएगी? बोले समझ गया इशारा, ये तो बच्चा बच्चा समझता है। बोले एक बात सुन लो, अगर आप अपने आप को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धालु समझते हो, अंदर का गुणस्थान तो भगवान जानते हैं, लेकिन इस समय आपका परम कर्तव्य है, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, 8 अंग में से 4 अंग तो आत्मा के भीतर, किसी को बाहर से समझ में नहीं आते, लेकिन 4 अंग बाह्य व्यवहार में झलकते हैं। तो वो व्यवहार आपको इस समय दर्शाना पड़ेगा, और वो भी ऊपर से नहीं, हृदय से। फिर देखना परिणाम क्या होता है, मुझे बताना। बोले बस इतना इशारा काफी था। अब क्या हुआ, पहले तो लोगों के चेहरे बहुत तनावपूर्ण थे, ऐसे ऐसे लकीरें उठ रही थी कि अब क्या होगा। अब ट्रेन का जब टाइम होता था तो पहले से स्टेशन पर यहां से लोग जाते थे स्वागत के लिए, और रिक्शे और टांगे भर भर करके उनको लाते थे, और अपने घर में उन्होंने कुछ कमरे खाली कर दिए घर के। मान लो 2 कमरे हैं तो 1 कमरा खाली है मेहमानों के लिए, और सारा सामान दूसरे कमरे में, और फिर जो घर के सदस्य है वो भी वहीं रह जाते थे। और जब वापस छोड़ने जाते थे तो बोलते थे कि आपको संभालने में जो त्रुटि हुई हमसे उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और जगह की बहुत कमी थी, एक कमरे में आपको आठ आठ दस दस लोगों को रुकना पड़ा, उसके लिए हम खेद पूर्वक क्षमा प्रार्थी हैं। एकदम गला भर आता था, ये सब नाटक की बात नहीं, बिल्कुल हार्दिक परिणति हो रही है। तब फिर उनकी आंखें भर आती थी, जो लोग मेहमान बन करके ऐसे गले लगाते थे, बोले कि तुमने जो हमें प्रेम दिया है उस प्रेम में इतनी जगह थी कि कमरे, छोटा कमरे की जो जगह थी वो हमें बिल्कुल कम नहीं पड़ी। बोले तुम्हारे दिल में जो जगह थी वो इतनी विशाल थी कि छोटा कमरा हमें छोटा लगा ही नहीं। बोले क्या अद्भुत दृष्टांत है इस पंचम काल का, वात्सल्य अंग का कितना सुंदर दृष्टांत है। और इतना आनंदपूर्ण रहा वो प्रवास मुंगावली का। आज भी अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग वहां पर आपको मिल जाए मुंगावली में, उनसे पूछ लेना आप, कभी कभी जाना हो वहां कहीं बिना बारह तरफ अगर जाना हो आपका कभी, तो फिर मुंगावली नाम का एक स्थान है वहां बीना के पास में। कितने किलोमीटर है? नहीं, गुना से 100 किलोमीटर है, बीना से कम है, मतलब वो नहीं 30-35 होगा शायद, कितना होगा लगभग, जितना भी हो पास में ही हो, बहुत दूर नहीं है। तो वहां किसी पुराने बुजुर्ग से पूछना आप कि वो समय आपको याद है जब, उन मुनियों में से दो मुनियों के नाम तो हमें याद है, एक धर्मसागर मुनि थे और एक पद्मसागर मुनि थे, और तीसरे मुनि पता नहीं कौन थे। तो ये पूछना आप उनसे कि उस समय जब आए थे महाराज तब कैसा था वातावरण, ट्रेनें भर भर करके लोग आते थे और कभी किसी को असुविधा नहीं हुई, और असुविधा होती भी नहीं। क्या है कि रूखा भोजन भी अगर प्रेम से परोसा जाए तो उस प्रेम से उस भोजन में स्वाद आ जाता है, और स्वादिष्ट भोजन भी अगर तिरस्कार पूर्वक किसी को दिया जाए तो फिर कड़वाहट महसूस होती है। कितनी अद्भुत बात है। तो कहीं भी किसी के पास कोई कमी नहीं है, अगर वात्सल्य और करुणा अपने हृदय में भरी हो तो अपन दुनिया में संपन्न है। और तिजोरियां भरी हो, वात्सल्य करुणा न हो हृदय में, तो फिर अपने से बड़ा कंगाल नहीं है कोई दुनिया में। तो वो परिणति, ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं, स्थितिकरण, वात्सल्य, उपभुवन, सारी बातें, सम्यक दर्शन की कैसे पहचान हो, उसके 8 चिन्ह बताए। वत्सल्यम विनयेन दु, अनुकंपाए सुदान दच्छाए, मग्गुण संसनाए अवगुहण रखणाए, और अज्जवे ही भावे ही, 8 चिन्ह बताए। एक तो कैसे पहचानोगे सम्यक दृष्टि कौन है कौन नहीं है, तो पहला चिन्ह बताए वात्सल्य। वात्सल्य न हो तो कभी स्थितिकरण न हो, है समझ, समझना कि हम 5 लोग इकट्ठे हो गए और फिर महाराज के पास लेकर के चले गए एक डेप्यूटेशन कि महाराज ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपको ठीक होना पड़ेगा, हम स्थितिकरण करने आए हैं। स्थितिकरण कभी दादागिरी से नहीं हो सकता, याद रखना, स्थितिकरण विनय और वात्सल्य से होता है। जब तक सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आप मेरे आत्मीय जन हैं, तब तक वो आपकी बात पर ध्यान क्यों देगा, क्यों देगा? अपनों की बात असर करती है, परायों की बात किसी काम की नहीं होती। तो फिर आप जब तक उनके अपने नहीं बनेंगे तब तक उनको नहीं सुधार सकते। खास तौर से किसी साधु को सुधारना हो तो आप उनको एहसास करा दीजिए कि मैं पराया नहीं हूं, मैं उस पार्टी का नहीं हूं। उस पार्टी का मतलब, अगर साधु को ऐसा लगे कि ये मेरी एंटी पार्टी का है, तो मैं एंटी पार्टी का नहीं हूं, मैं आपके ही चरणों का दास हूं। कैसे स्थितिकरण हो जाता है? देखो उनकी संलेखना हो गई, उन मुनिराज की कैसे हो गई संलेखना? अगर कोई विमुख हो जाता सेवा से और उनसे नफरत करने लग जाता तो क्या होता? उनका भाव बिगड़ जाता। लेकिन नहीं, ये चिंता होनी चाहिए अंदर, केयर जिसको बोलते हैं, एक अंग्रेजी में बहुत छोटा सा सूत्र है, लव केयर्स, उसको हिंदी में अनुवाद करें तो वात्सल्य ख्याल रखता है। कितना छोटा सा वाक्य है लेकिन गोल्डन लेटर्स में लिखने योग्य है, वात्सल्य ख्याल रखता है। तो अगर आपके अंदर वात्सल्य हो तो वो चीज आएगी, वो मुंह से बोलने वाली बात नहीं है, वो आंखों की भाषा है उसकी। वात्सल्य की भाषा जो है वो यहां जबान से नहीं होती, आंखों से प्रकट होती है, वो वात्सल्य। तो वत्सल्यम विनयेन, दूसरा चिन्ह है सम्यक्त की पहचान का, विनय। विनय किसकी करना, कैसी करना और कैसे करना, किसकी कैसी और कैसे विनय करना, इससे सम्यक्त की पहचान हो जाती है। अनुकंपा, अनुकंपा, किसी की वेदना का अपने को एहसास हो, उसके अनुरूप यहां कंपन आ जाए, अनुकंपा, करुणा जिसका नाम है। सम्यक दृष्टि की करुणा अलग प्रकार की होगी, उससे भी पहचान होती है। चींटियों को आप बचा कर चलो और सामने से कोई बेचारा टकरा जाए, आंखों से ठीक से देख नहीं रहा, आपसे टकरा जाए तो एक धक्का मार दो, देख के नहीं चलता। अब बताइए ये कहां की अनुकंपा, कहां की करुणा है। चींटियों को तो आप देख कर चल रहे हैं, उसकी तो जान बचा रहे हैं। दया, दया का पालन करना है, शास्त्रों में आया धर्मस्य मूलम दया, ये सब रटे रटाए शब्द हैं तोतों के, धर्मस्य मूलम दया, चींटियों को बचा के चल रहे हो और आदमी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव, ये सारे चिन्ह मिथ्या दृष्टि के। जब सम्यक दृष्टि के चिन्ह अलग बता रहे हैं तो इससे उल्टे चिन्ह किसके होंगे बताइए, मिथ्या दृष्टि के। और सुदान दच्छाए, दान देते समय जो कुशलता सम्यक दृष्टि में दिखाई देती है वो अनोखी होती है, और एक दूसरा सम्यक दृष्टि खड़ा हो वो देखकर पहचान जाएगा कि ये जिस कुशलता के साथ ये दान दे रहा है लगता है सम्यक दृष्टि। वैसे तो सम्यक्तम वस्तुतः सूक्ष्मम, वैसे देखा जाए तो गुणस्थान किसका कौन सा है, ये तो केवली का विषय है, लेकिन तो भी ये स्थूल चिन्ह बताए हैं। तो दान देने में जो कुशलता है उससे भी सम्यक दृष्टि की पहचान होती है। कितने चिन्ह हो गए, चार, वात्सल्य, विनय, अनुकंपा और दान दक्षता। उसमें सुविशेषण लगा, सुदान दक्षा है, सुपात्रों को दान देते समय जो कुशलता होती है वो। फिर पांचवा चिन्ह बड़ा विचित्र है, मग्ग गुण संसनाय, मोक्ष मार्ग के गुणों की प्रशंसा। बहुत लोग करते हैं लेकिन यदि सम्यक दृष्टि करेगा तो दूसरा कोई सम्यक दृष्टि पहचान सकता है कि ये प्रशंसा मिथ्या दृष्टि के मुख से निकलने वाली प्रशंसा नहीं है। रत्नत्रय की जो प्रशंसा सम्यक्त्वी के मुख से निकलेगी निराली होगी, वो कुछ शब्द ही अनोखे सोचते हैं उनको। मग्ग गुण संसनाय, अवगुण रखनाय, उपगुहन यानी किसी धार्मिक मनुष्य से कोई त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि को कैसे छुपाना, किस प्रकार से उस त्रुटि को प्रचारित न होने देना, ये कला अगर देखनी हो तो सम्यक दृष्टि में देख लेना। मिथ्या दृष्टि तो तुरंत उसको अखबारों में दे देगा कि फलानी घटना घटी और ऐसा हुआ वैसा हुआ, देखो हम कितने निडर हैं, इस चीज को भी छपाने से नहीं भटते पीछे बोले, वो तो है ही निडर। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा है कि जो इतने भयंकर संसार में भटकने से भी जिन डर नहीं लगता, जिनको घबराते नहीं, वो वाकई निडर है। 84 लाख योनियों में भटकने से उनको डर नहीं लग रहा है, पाप का फल क्या मिलेगा उसका भी उनको डर नहीं है, क्या बहादुर है, वाह। ऐसे बहादुर मिलेंगे क्या हर जगह, निडर है उन्हें, वो अपना साहस समझते हैं इस बात को कि देखो मैं गुरु के सामने भी कुछ भी बोल सकता हूं, ये साहस नहीं है, बेशर्मी है। गुरु के सामने कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर लेना, पैर फैलाकर बैठ जाना, कुछ भी उठपटांग हरकतें करना, ये अभिनय है, साहस नहीं है। तो ये भी एक पहचान है, उपगुहन, दोषों को कैसे ढांकना। लड़का अगर पिता के जेब से कुछ चुरा ले तो आज तक कभी अखबारों में हमने कभी नहीं पढ़ा ऐसा, और ना आपने पढ़ा होगा कि कहीं किसी अखबार में ऐसे समाचार छपे हो कि फलाने लड़के ने अपने बाप की जेब में से फलाने इतने नोट निकाल दिए, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बेटे से पिता का स्नेह होता है, और जिसके प्रति स्नेह होता है उसकी निंदा संभव नहीं हो सकती। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि का साधुओं के प्रति और अन्य धर्मात्माओं के प्रति स्नेह होता है, वात्सल्य होता है। वात्सल्य जहां होगा वहां निंदा कैसे हो सकती है? निंदा घृणा पूर्वक होती है, और धार्मिक जनों के प्रति जिसके अंदर घृणा है वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी साधुओं की निंदा करने वाले हैं वो आंख बंद करके आप कह सकते हो नियम से, बस आप समझदार हैं। तो उपगुहन रक्षण यानी स्थितिकरण, अगर कोई विचलित हो रहा है मार्ग से तो उसको किस प्रकार वापस स्थिर कर देना, ये विद्या भी सम्यक दृष्टि के पास। कभी अपने अंदर शक्ति नहीं है तो फिर दूसरे का सहारा भी लेना पड़ता है कि नहीं इनको ठीक करना है अपने को, और फिर ऐसे व्यक्ति का सहारा नहीं लेना जो खुद ही बदमाश हो, वो हम पूरा मटिया मेट कर डाले। किसी को सुधारने के लिए कुछ परिपक्व मस्तिष्क वाले विवेकी जनों का ही सहयोग लेना चाहिए, हर किसी का नहीं। नहीं तो एक को आप बता दो तो फिर वो 50 को और बता दे। अब जैसे एक विद्वान कई शिविरों में कहते फिरते कि मैंने उन महाराज का स्थितिकरण किया, उनका स्थितिकरण किया। अरे स्थितिकरण किया तो फिर ये अनाउंस करने की क्या जरूरत पड़ रही है? अब उन महाराज को पता चल गया कि ये शिविरों में ऐसा बोलते हैं कि मेरा स्थितिकरण किया, अब वो महाराज विमुख हो गया उनसे कि स्थितिकरण किया इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मतलब बिल्ला लगा लो, बैच लगा लो कि मैं स्थिति करता। स्थितिकरण कोई अभिमान की वस्तु है? शिविर में बताने की चीज है कि मैंने स्थितिकरण किया? अरे तुम खुद सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो इसका कुछ पता नहीं है, और तुम इतना अभिमान करने लगे कि मैंने साधु को सुधार दिया। बहुत ही अनुचित प्रवृत्ति है ये। ये तो अधूरा ज्ञान जिनके पास होता है वो ऐसी नादानी कर बैठते हैं। जिनको जिनागम की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ है, इसकी गहराई में जो नहीं गए, वो उथला ज्ञान जिनका रहता है वो ज्यादा उछल कूद मचाते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, स्थितिकरण तो अपना कर्तव्य है, कोई मान प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। तो स्थितिकरण भी एक पहचान है सम्यक दृष्टि की। और कैसे मतलब किन शब्दों से स्थितिकरण हो जाता है, क्या जादुई बात है स्थितिकरण। मतलब एक वाक्य बोलो तो स्थितिकरण हो जाता है, और दूसरा वाक्य बोलो तो सब मटिया मेट हो जाता। मतलब इतना विवेक उसके अंदर, पता नहीं कहां से ऐसे वाक्य निकलते हैं उसमें सम्यक दृष्टि के अंदर से, कि बिल्कुल सामने वाले का सुधार हो जाए। कोई गलती हो रही है उसको ये भी एहसास ना हो कि मेरे मान को ठेस पहुंचा रहा है। आप अपमानित करके कभी किसी का स्थितिकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अपमानित व्यक्ति या तो निर्लज हो जाता है या फिर गुप्त रूप से पाप करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि मान कषाय मानव में होती है अधिक मात्रा में। इसलिए किसी के मान को ठेस पहुंचाकर कभी स्थितिकरण नहीं किया जा सकता। हां स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर किया जा सकता है स्थितिकरण। जैसे एक दिन हमने कहा था ना कि खून का व्यापारी जैनी कैसे हो सकता है, तो ऐसे शब्दों से सुधा सागर महाराज जी ऐसे ही डोज देते हैं अक्सर, तो कई लोगों की बुद्धि सुधर जाती। गुटके के ऊपर अगर उनका व्याख्यान सुन ले कोई गुटखा खाने वाला, तो वो पान ठेला के सामने ऐसे सिर झुका करके चला जाएगा आगे। ये हालत हो जाती है उस, मतलब इतनी कसाई कर देते हैं कि फिर यहां तक की स्थिति पहुंच जाती। तो कभी कभी ऐसे उपाय भी करने पड़ते हैं, लेकिन अपनी भूमिका देखकर। अगर आपकी भूमिका छोटी है तो विनय से काम करना पड़ेगा, बड़ी है तो फिर आप कुछ और भी अनुशासन ला सकते हैं, स्थितिकरण की कला सम्यक दृष्टि के पास। और आखिरी चीज बता दी कि उसकी सरलता को देख करके भी पहचान में आ जाता है कि इतना सरल बर्ताव तो सम्यक दृष्टि का ही हो सकता है, ऐसी सरलता। अज्जवे ही भावे ही, उसके सरल परिणामों से भी पकड़ में आ जाता है कि ये सम्यक दृष्टि जी। तो इस तरह कितनी दुर्लभ बात है संसार में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्राप्ति। संसार में भटकते भटकते एवं सुट्ठु असारे, अत्यंत असारे संसार में जो दुखों का सागर है, भयंकर है, क्या कहीं भी सुख है? विचार करने पर पता चलता है कि नहीं, कहीं सुख नहीं है। पाप कर्म के उदय से राजा भी अपवित्र स्थान का कीड़ा बन जाता है, लेकिन कितनी विचित्र बात है कि वहीं प्रीति करने लग जाता है। उस गंदगी में, उस कीड़े की पर्याय में राजा को प्रेम हो जाता है। और वो कथा आपने सुनी है, फिर 18 नातों की भी कथा आई थी। यानी संसार का स्वरूप बतलाते बतलाते आचार्य महाराज ये चाहते हैं कि जो भी इसका स्वाध्याय करे, इसका श्रवण करे, उसके अंदर एक बार जागृति तो आ जाए। अभी तो सोए हुए हैं, वो नींद तो टूटे, एक बार विचार तो आए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। बस एक बार विचार भर आ जाए तो शायद इस मनुष्य जीवन में मोड़ आ सकता है। मोड़ आ गया तो फिर उजाले की तरफ गति हो सकती है, और कोई रास्ता अभी तो समझ में नहीं आता। आज अष्टमी का दिन है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का ही स्वाध्याय दोपहर में भी चल रहा है। चार गतियों के भ्रमण का वर्णन अपन एक बार दोहरा रहे थे कि मनुष्य गति में भी कितने अगणित दुख भोगता हुआ भी कोई अपना मन धर्म में नहीं लगाता, और हाय पैसा हाय धन इसी चक्कर में पाप कमाता रहता है। कभी धनवान निर्धन बन जाता है, कभी निर्धन धनवान बन जाता है, राजा नौकर बन जाता है तो नौकर राजा बन जाता है। अकृत पुण्य की कथा में आपको ख्याल हो, शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु बन जाता है, और ये सब कर्म के फलस्वरूप सारी घटनाएं होती रहती है। यही तो संसार का स्वभाव है। अब यदि ले देकर बड़ी मुश्किल से कोई देव पर्याय को प्राप्त करे तो वहाँ मानसिक दुख होता है, बड़े देवों का वैभव देखकर छोटे देवों को बड़ा कष्ट होता है, मन ही मन दुखी होते रहते हैं। और कभी इष्ट वियोग जनित दुख हो जाता है ललितांग देव और स्वयं प्रभा देवी का, जो आगे भविष्य में जय कुमार, बल्कि ये कहें कि आदिनाथ भगवान बनते हैं। तो इष्ट वियोग का दुख भी वहां देव पर्याय में हो जाता है। फिर बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारी ऐश्वर्य संपन्न जो देव हैं, उनको विषयों की तृष्णा के कारण भी दुख बना रहता है, क्योंकि विषयों के प्रभाव से होने वाला सुख जिसको भी प्राप्त हो जाए उसको तृप्ति कैसे हो सकती है? पराधीन सुख कभी तृप्तिदायक नहीं हो सकता। शारीरिक दुख की अपेक्षा मानसिक दुख बहुत भयंकर होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए मानसिक दुख से युक्त मनुष्य के लिए तो इंद्रियों के विषय भी दुखदायक हो जाते हैं। अब देवों का जो सुख है वो मनोहर विषयों के कारण होता है, और जो विषयों के वशीभूत है ऐसा सुख दुख का ही कारण हो सकता है। इस प्रकार अत्यंत असार इस घोर दुख के सागर संसार में क्या कहीं भी सुख वास्तव में है, विचार करने की बात है। यानी इतना समझाने की बात समझ में आता है, जिसको आ जाए उसको आता है कि ये सब भ्रम है, वास्तविक सुख नहीं, ये सुख का आभास होता है। गर्मियों में रास्ते पर पानी दिखता है, बहुत दूर दूर पानी नहीं होता। अभी ग्रीष्मकाल में विहार हुआ था, वहाँ नड़ियाद के पास से हम विहार किया, चिंतामणि तक के विहार किया, तो रास्ते में कई जगह दोपहर के समय से दूर देखो रास्ते में तो ऐसा लगता है कि पानी है, फिर आगे चले जाओ कुछ नहीं रहता। वैसे विषयों में बार बार संसारी प्राणी सोचता है कि यहाँ सुख होगा, वहाँ जाता है तो कुछ नहीं मिलता, तो सोचता है वहाँ होगा, उधर जाता है वहाँ कुछ नहीं। बहुत चेंज करता रहता, बदलता रहता है विषयों को, लेकिन जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ कहाँ से मिल सकती है। सुख अजीव का गुण तो है नहीं, और जीव कितना नादान है कि जो सुख जीव का गुण है उसकी खोज अजीव में करता है। यानी विषयों में सुख ढूंढने का मतलब क्या है? अच्छा, अगर मान लो किसी दूसरे जीव में वो सुख की कल्पना करे, यदि उसके पास भी सुख होता तो वो दुखी क्यों नजर आता? देखो, किसी और से मनुष्य सोचता है कि चलो इसके सहारे मैं सुखी हो जाऊं, उससे पूछो कि तुम सुखी हो गया, क्या जवाब देगा? कुछ नहीं। वो तो पूरी, हमें पूरी जानकारी है उस बात की, सारे रिश्ते जो हैं वो केवल अपनी सुरक्षा के लिए हैं। और क्या है सार बताओ आप रिश्तों में? फैसिलिटी कहो या सिक्योरिटी कहो, आप फैसिलिटी एक तरफ रखो, आप फैसिलिटीज तो कहीं भी मिल जाएंगी आपको। सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कौन किसके साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ा है? देखो, ईमानदारी की बात है यहाँ, केवली भगवान सब देख रहे हैं, बेईमानी चली नहीं सकती। क्यों कुटुंब में रहते हैं लोग? एक दूसरे का सहारा रहता है। होम मिनिस्ट्री अलग चलती है, एक्सटर्नल अफेयर्स अलग चलते हैं, तो सब मतलब पूरा इंटरकनेक्टेड है, और पूरा संसार एक स्वार्थ का नाटक है और कुछ नहीं। सुनने में खराब लगता है और सच्चाई ऐसी होती है कई बार, जो समझ ले तो फिर वो उस जाल से निकल सकता है, नहीं तो वो जाल ऐसा जाल है, मोह जाल, कि उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अनादिकाल से आज तक नहीं निकला जीव, ये सिद्ध करता है कि कितना भयंकर जाल है। जेल में से तो कुछ वर्षों बाद छूट जाता है, लेकिन ये मोह की जेल ऐसी है कि इसमें से अनादिकाल से अब तक नहीं छूटा, अनंत भव हो गए, और कितने परिवर्तन किए उसने। परिवर्तन का वर्णन अभी इसके आगे ही है, अपन ने सुना भी है कुछ। और फिर ये बड़ी भयंकर गाथा है, 63वीं गाथा जो है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, इसमें से कुछ गाथाएं तो एकदम कंठस्थ करके कभी भी अपने को, जब अपना जो सेचुरेशन है ब्लड में, जो लेवल बिगड़ जाता है ना अपना, विषय कषायों की तरफ ज़्यादा वो हो जाते हैं, तो फिर ऐसे कुछ डोज दे देना चाहिए तुरंत, लगे हाथ। दुखी कम वसादो राया व्यासु कीड़ो हुदी तथे वे कुण रही पिख मोहस महापम। पाप कर्म के उदय से राजा गंदे स्थान पर कीड़ा बन जाता है। मरने के पहले बेटे से बोल गया कि मैं जैसे ही कीड़े बनूं, मुझे कीड़ा नहीं बनना, लेकिन क्या बताऊं, बनना पड़ेगा, मुझे मार देना तो वहां से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, कहीं अच्छा जन्म मिल जाएगा। जब बेटा मारने जाता है तो वो अपनी जान बचाता है। इस घटना को देखकर बेटा विचार करने लग जाता है कि देखो, उस गति में जाने के पहले पिताजी मुझे आदेश दे गए थे कि अमुक स्थान पर, अमुक समय पर मैं तुम्हें कीड़े के रूप में वहां पर मिलूंगा, तुम मुझे मार देना। बेटा पूछता है कि आपको कैसे मालूम? बोले कि मुनिराज ने बताया। तो मुनिराज ने बताया, मुनिराज का बताया हुआ कैसे प्रमाणित हो सकता है? बोले कि उनने ये भी बोला है कि 7 दिन बाद बिजली गिरने से तेरी मृत्यु होगी, बस इसी को समझ लेना तू। इतना अगर सच निकल गया तो समझ लेना कि जो मैं आगे का कह रहा हूं ना वो भी सच निकलने वाला है। तो सही में बिजली गिरी उस पर, 7वें दिन उसका मरण हो गया, मर करके वो वहीं कीड़ा बन गया। और उसी समय पर जब वो लड़का गया वहां जा करके, देखता है सही में कीड़ा है वो, तो उसको मारना चाहता है तो वो छुप जाता है। लड़का मन में विचार करने लग जाता है कि कैसी विडंबना है, मैंने इतनी अशुद्ध पर्याय में जाने के बाद भी मोही प्राणी वहीं प्रीति करने लग जाता है। वो गुरु के पास जाकर के अब सारी घटना सुनाता है, तब गुरु बोलते हैं कि अब तुम्हें उपदेश की तो कोई आवश्यकता नहीं है, तुमने तो आंखों से देख लिया संसार कैसा होता है, अब क्या विचार है तुम खुद बताओ। तो बोले कि बस गुरुवर अब आपके ही मार्ग पर चलना है।